आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अयोध्या में प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह में लिया हिस्सा। रक्षा मंत्री ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर परकोटे में स्थित अन्नपूर्णा मंदिर के शिखर पर फहराई ध्वजा। केंद्र सरकार ने 100 मिलीग्राम से अधिक निमेसुलाइड युक्त सभी दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर लगाया प्रतिबंध। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड के परामर्श से उठाया गया यह कदम। उत्साह और उल्लास के साथ विविध आयोजनों के जरिए नए वर्ष के पहले दिन का प्रदेश भर में हो रहा है स्वागत। प्रमुख धार्मिक स्थलों पर किए गए हैं विशेष इंतजाम। और मौसम विभाग ने प्रदेश भर में 6 जनवरी तक कहीं कहीं घने कोहरे की दी चेतावनी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज हल्की बारिश की भी है संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर आयोजित प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के परकोटे में स्थित अन्नपूर्णा मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या ने पिछले कुछ वर्षों में विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है।
अब आप देखते होंगे देश और दुनिया का कोई भी ऐसा श्रद्धालु नहीं, सनातन धर्मावलंबी नहीं, जो अब अयोध्या आकर के दर्शन करके अभिभूत न होता हो। पिछले 5 वर्ष के अंदर 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अयोध्या धाम में आया है। भारत की पहली सोलर सिटी के रूप में अयोध्या आ गई है। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर, रेलवे की डबल लाइन के साथ अयोध्या धाम जुड़ गया है। अब अयोध्या में क्या नहीं है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अयोध्या में हुए अभूतपूर्व परिवर्तन ने इसे वैश्विक धार्मिक केंद्र के रूप में स्थापित कर दिया है।
डबल इंजन सरकार के सशक्त नेतृत्व में अयोध्या अभूतपूर्व परिवर्तन का यह साक्षी बन रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच के अनुरूप आस्था, संस्कृति और इतिहास को संजोते हुए यहाँ विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना का निर्माण हो रहा है। राम मंदिर निर्माण के बाद करोड़ों श्रद्धालुओं के आगमन ने अयोध्या को वैश्विक धार्मिक पर्यटन का केंद्र बना दिया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसको आस्था और परंपरा का एक दिव्य उत्सव बताया। केंद्र सरकार ने 100 मिलीग्राम से अधिक निमेसुलाइड युक्त सभी दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड के परामर्श से उठाया गया है। इसमें बताया गया कि निमेसुलाइड युक्त सभी दवाओं का उपयोग स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा हो सकता है। प्रदेश के फार्मेसिस्ट फेडरेशन के अध्यक्ष सुनील यादव ने कहा है कि यह निर्णय वैज्ञानिक साक्ष्यों, विशेषज्ञ सलाह और जन स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं। फेडरेशन ने दवा कारोबार से जुड़े सभी थोक और खुदरा विक्रेताओं से इस आदेश का सख्ती से पालन करने की अपील की है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने प्रदेश में 32,000 से अधिक आरक्षी, नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। बोर्ड के अनुसार इच्छुक अभ्यर्थी 30 जनवरी तक इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई 2025 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके अभ्यर्थी ही पुलिस भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन और अर्हता से जुड़ी विस्तृत जानकारी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मनरेगा से जुड़े श्रमिक, विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के तहत पूरी तरह सुरक्षित हैं। श्री चौहान ने मनरेगा के प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत में यह बात कही। वेतन और मानदेय राशि के भुगतान को लेकर चिंताओं पर श्री चौहान ने कहा कि प्रशासनिक मदों के अंतर्गत व्यय की सीमा 6% से बढ़ाकर 9% कर दी गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। अंग्रेजी नववर्ष के पहले दिन पूरे प्रदेश में उत्साह और उल्लास का वातावरण है। बीती रात से ही प्रदेश भर में नए वर्ष के स्वागत को लेकर विविध आयोजन किए जा रहे हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए साल की पूर्व संध्या पर कर लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि नव वर्ष नई ऊर्जा और सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी नए वर्ष पर अपने शुभकामना संदेश में प्रदेश की जनता के सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की मंगल कामना की है। नए साल के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न धार्मिक स्थलों एवं मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
नए साल में वाराणसी स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए वीआईपी प्रोटोकॉल सहित अन्य सभी अनुरोध को 3 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन कराने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। प्रभु राम की नगरी अयोध्या, मिर्जापुर स्थित माँ विंध्यवासिनी धाम में भी श्रद्धालुओं के भारी संख्या में आगमन को देखते हुए सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए हैं। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में अतिरिक्त पुलिस फोर्स की व्यवस्था की गई है। पुलिस के द्वारा इन धार्मिक स्थलों पर लगातार गश्त बढ़ाने के साथ ही जगह जगह पर चेकिंग भी की जा रही है। इससे पहले कल पुराने वर्ष के आखिरी दिन भी प्रदेश के कई धार्मिक स्थलों एवं मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन और पूजन के लिए पहुंचे। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
बीता वर्ष 2025 भारत की विकास यात्रा में एक निर्णायक वर्ष रहा है। बीते वर्ष कई नीतियों का देश की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान रहा। विशेष श्रृंखला सुधारों का वर्ष में आज हम चर्चा कर रहे हैं, वर्ष 2025 में भारत किस तरह दुनिया के नए उत्पादक देश के रूप में उभरा।
भारत अपने औद्योगिक और आर्थिक विकास में 7.8% की अनुमानित वृद्धि के साथ एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया। नोएडा में भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास निर्माण इकाई का उद्घाटन किया गया। इसी तरह ऊर्जा के क्षेत्र में भी देश ने 100 गीगावाट सौर ऊर्जा विनिर्माण क्षमता तक पहुंचकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। दूसरी ओर देश के उद्योगों ने लाखों लोगों के लिए रोजगार का भी सृजन किया है। नए जीएसटी सुधारों में 5% और 18% के तर्कसंगत कर स्लैब से उत्पादकों के लिए लागत और संचालन में आने वाली दिक्कतों में कमी आई। शिवांग और समर्थ के साथ अक्षित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुर्गन ने कहा कि वर्ष 2025 में सरकार ने कई ऐतिहासिक सुधार किए हैं जो विकसित भारत 2047 की दिशा में देश की राष्ट्रीय यात्रा में महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ते हैं। नई दिल्ली में भारत 2026 कैलेंडर का विमोचन करते हुए उन्होंने कहा कि ये सुधार समावेशी विकास सुनिश्चित करने, आर्थिक स्थिरता बढ़ाने और देश के दीर्घकालिक विकास के लिए एक स्थायी आधार तैयार करने के स्पष्ट उद्देश्य से प्रेरित हैं। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू भी उपस्थित रहे। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा ने कहा कि यूपी पुलिस संगठित अपराध पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लगाम लगा रही है। कल एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि बीते एक वर्ष में प्रदेश में अपराधों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है।
केंद्र सरकार द्वारा संचालित ITSSO पोर्टल होता है। इस ITSSO पोर्टल में पूरे देश भर के जो महिला अपराध होते हैं उसमें की गई कार्रवाई अंकित की जाती है, वो सेंट्रली को मॉनिटर किया जाता है। तो ITSSO पोर्टल में भी जो प्रभावी अनुश्रवण रहा उत्तर प्रदेश पुलिस का, उसमें बलात्कार और पॉक्सो के निस्तारण दर 98.90% के साथ यूपी नंबर 1 पर है पूरे कंट्री में। यहाँ पेंडेंसी रेट मात्र 0.20% है, यानी निर्धारित अवधि में हमारी सारी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो रही है।
मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज कहीं कहीं घना से लेकर अत्यंत घना कोहरा पड़ने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल से 6 जनवरी तक प्रदेश भर में कहीं कहीं घने कोहरे की चेतावनी दी है। विभाग के मुताबिक इस अवधि में मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज कहीं कहीं हल्की बारिश की भी संभावना बनी हुई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अयोध्या में प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह में लिया हिस्सा। रक्षा मंत्री ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर पर कोटे में स्थित अन्नपूर्णा मंदिर के शिखर पर फहराई ध्वजा। केंद्र सरकार ने 100 मिलीग्राम से अधिक निमेसुलाइड युक्त सभी दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर लगाया प्रतिबंध। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड के परामर्श से उठाया गया यह कदम। उत्साह और उल्लास के साथ विविध आयोजनों के जरिए नए वर्ष के पहले दिन का प्रदेश भर में हो रहा है स्वागत। प्रमुख धार्मिक स्थलों पर किए गए हैं विशेष इंतजाम। और मौसम विभाग ने प्रदेश भर में 6 जनवरी तक कहीं कहीं घने कोहरे की दी चेतावनी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज हल्की बारिश की भी है संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।